देखिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत् तद् विदित्वा मुनिः प्राह पत्नीं कष्टं कारषि घोरो दण्डधरः पुत्रो भ्राता ते भ्रमवित्तमः। तद् विदित्वा मुनिः प्राह पत्नीं कष्टं कारषि घोरो दण्डधरः पुत्रो भ्राता ते भ्रमवित्तमः। तद् विदित्वा मुनिः प्राह पत्नीं कष्टं कारषि घोरो दण्डधरः पुत्रो भ्राता ते भ्रमवित्तमः। तत् ये यः तत्य विदित्वा जानकर मुनि ही मुनि ने प्राह कहा पत्नी अपनी पत्नी से कष्टम अत्यंत दुखद अकारषि ही तुमने कर डाला घोरः भयानक दंडधरः महापुरुष जो अन्य को दंड दे सकता है पुत्रः ऐसा पुत्र भ्राता भाई ते तुम्हारा ब्रह्मवित्तमः अध्यात्म विद्या में पंडित जब ऋषि स्नान करके घर लौटे ऋषिक स्नान करके घर लौटे और उन्हें पता लगा कि उनकी अनुपस्थिति में क्या घटना घटी है तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा तुमने बहुत बड़ी भूल की है तुम्हारा पुत्र घोर क्षत्रिय होगा जो हर एक को दंड दे सकेगा और तुम्हारा भाई आध्यात्मिक विद्या का पंडित होगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा वही ब्राह्मण योग्य कहलाता है जो अपने इंद्रियों तथा मन को वश में रख सकता हो जो आध्यात्मिक विद्या का पंडित हो और जो सहिष्णु तथा क्षमावान हो। किंतु क्षत्रिय वही योग्य है जो अपराधियों को कड़ा से कड़ा दंड दे। भगवद गीता में 18:42-43 इन गुणों का उल्लेख है। चूंकि सत्यवती ने अपनी चरु न खाकर अपनी मति की मादा की चरु खा ली, चरु मतलब आहुति, अतएव उससे जो पुत्र होगा वह क्षत्रिय गुणों से संपन्न होगा। यह अवांछनीय था। सामान्यतः ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण के गुणों वाला होना चाहिए, किंतु यदि वह क्षत्रिय की भांति खूंकार हो जाए तो उसका नामकरण भगवद गीता में वर्णित चारणों वर्णों के अनुसार होगा। चातुर्वर्णया मया सिस्टम गुण कर्म भागशः। यदि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण जैसा आचरण नहीं करता तो उसे उसकी योग्यता के अनुसार क्षत्रिय वैश्य या शूद्र कहा जाएगा। समाज को विभाजित करने का मूल सिद्धांत मनुष्य का जन्म नहीं अपितु तो उसके गुण तथा कर्म है। और उसके लिए विवाह के लिए अक्सर राजा जो होते थे वो क्या करते थे, स्वयंवर किया करते थे। स्वयंवर में योग्य व्यक्ति को ही चुना जाता था, स्वयं कन्या चुना करती थी। ऐसे में एक ऋषि भी आए थे जिनका नाम था ऋचिक। तो ऋचिक की इच्छा हुई थी, वो विवाह करना चाहते थे सत्यवती से, महाराज गाली की पुत्री से। तो राजा ने कहा, सोचा राजा ने विचार किया, उनको सीधे तो नहीं गाँव के मुंह में, उन्होंने विचार किया कि ये तो योग्य नहीं दिखाई पड़ते हैं कि मेरे कन्या से विवाह कर ले। कहने का मतलब है कि उनकी कन्या से विवाह करना जो है कोई साधारण बात नहीं थी, इतना सरल नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप तो योग्य व्यक्ति, उन्होंने कहा नहीं सोचा, मतलब उन्होंने सोचा कि ये तो योग्य व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने फिर राजा गाधी ने एक विचार प्रस्तुत किया कि उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे कन्या से बेटी से विवाह करना चाहते हैं तो आपको दहेज देना होगा। सामान्य रूप से तो दहेज मांगा नहीं जाता था प्राचीन समय में, हाँ, लेकिन यहाँ पे मांगा गया था। ये कंडीशन डाल दिया गया था, अगर जो है ऋषिक मुनि जो है विवाह करना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा, दहेज लाना पड़ेगा। और दहेज क्या है, आपको 1000 घोड़े लाने होंगे और उस दोनों में से, दोनों कान में से एक कान उस घोड़े का काला होना चाहिए। अब ऐसे घोड़े कहाँ मिलेंगे बताइए, घोड़े मिलते हैं ऐसे कहीं पृथ्वी में? तो ऐसा कोई घोड़ा नजर नहीं आएगा आपको जिसका एक कान काला हो और एक कान जो है उस और किसी अन्य रंग का हो। बहुत मुश्किल है, अगर कहीं भी जाएगा तो उतना आसान नहीं है। कहने का मतलब है उन्होंने बड़ा कठिन बना दिया, ये परिस्थिति को बहुत कठिन बना दिया कि आपका जो है विवाह तभी हो सकता है मेरी कन्या से अगर आप 1000 घोड़े लेके आ जाए, इसके एक कान जो है काले होने से। तो ऋषिक मुनि जो है वो गए किसके पास, वरुण के पास गए, देवता के पास गए। वरुण देवता ने प्रसन्न होकर, ऋषिक मुनि से प्रसन्न होकर 1000 घोड़े दे दिए, इसके एक कान क्या था, काला था। अब देवता और तो कुछ भी कर सकते हैं, पृथ्वी में तो कहीं नहीं मिला उनको, लेकिन क्योंकि ऋषि थे, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत पावरफुल थे, तो उन्होंने वरुण देव को प्रसन्न कर दिया और वरुण देव ने जो है प्रसन्नता पूर्वक उनको 1000 घोड़े दिए, एक कान काला था। तो ऐसे घोड़े प्राप्त करके ऋषि मुनि किसके पास आए, महाराज गांधी के पास आए। गांधी के पास आकर उन्होंने वो घोड़े दिए, भेंट में दिए और राजा गांधी जो है बहुत प्रसन्न हुए और कहा ठीक है आप विवाह करिए हमारी कन्या से। तो इस तरह से सत्यवती का विवाह हो गया किससे, ऋषिक मुनि से। अब क्या हुआ कि जब विवाह हो गया कुछ समय के बाद, उनकी पत्नी और पत्नी की माता यानी ऋषिक मुनि की सास, उन दोनों ने अनुरोध किया संतान के लिए, यानी कि पत्नी को भी संतान चाहिए और माता को भी, उनकी माता को भी संतान चाहिए। नहीं, यानी कि राजा की जो सास है ऋषिक मुनि की जो सास है, तो ऋषिक मुनि की जो पत्नी है सत्यवती, उनको भी संतान चाहिए और सत्यवती की जो माँ है उनको भी संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। तो ऋषिक मुनि ने कहा कोई समस्या नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा और आहुति देनी होगी। तो आपके लिए, क्योंकि अपनी पत्नी से विशेष स्नेह था ऋषिक मुनि का, तो पत्नी से कहा कि आपके लिए मैं ब्राह्मण मंत्र से, क्या क्या ब्राह्मण मंत्र से युक्त जो है आहुति दूंगा। और अपनी सास को क्या बोला कि आपके लिए आपको भी संतान होगी, कैसे, क्षत्रिय मंत्र से युक्त जो है मैं आहुति दूंगा। तो दोनों के लिए व्यवस्था की गई और ये कहकर वो कहाँ चले गए, आहुति तैयार करके जो है चले गए स्नान करने के लिए। और स्नान करने के उपरांत जब वापस आए, तो स्नान करने से मतलब वापस आने से पहले तो उन्होंने क्या किया, आहुति मार्पित जो होता है, जो भी सामग्री दी जाती है या फल इत्यादि होता है, तो वो जो है क्या हुआ, सत्यवती जो थी, सत्यवती से उनकी माँ ने कहा कि बेटी देखो ऐसा है, उनको ऐसा लगा कि मेरी बेटी के बाद जो आहुति है या सामग्री है जो भी है, वो लगता है कि ज़्यादा जो है वो श्रेयस्कर है मेरी आहुति से। तो माँ ने कहा क्या मुझे तुम दे सकती हो, अपनी आहुति मुझे दे सकती हो। तो बेटी बहुत समर्पित थी, तो बेटी ने मना नहीं किया, बेटी ने तुरंत ही मान लिया, तत्काल ही मान लिया और कहा कि ठीक है माँ आपकी जैसी इच्छा है। सामान्य रूप से ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन जब माँ ने अनुरोध किया तो बेटी ने स्वीकार कर लिया और बेटी ने क्या किया, अपनी आहुति किसको दे दी, माँ को दे दिया। अब जो है ऋषिक मुनि वापस आए, ऋषिक मुनि जब वापस आए तो ऋषिक मुनि ने कहा ठीक है मुझे अब यज्ञ वगैरह करना है, तो सब कुछ तैयार है। तो जब देखा अरे ये क्या हुआ, तो उनकी माँ ने कहा कि ऐसा है कि आपने जो आहुति रखी थी मेरी बेटी के लिए वो मैंने ले लिया है। जब पता चल गया ऋषिक मुनि का ऐसा हुआ है, तो बहुत क्रोधित हुआ, ऋषिक मुनि बहुत क्रोधित हुए, ये आपने अच्छा नहीं किया, गलत किया है, ये ठीक नहीं किया है, अब क्या होगा, आपका जो पुत्र होगा वो खूंखार क्षत्रिय होगा, फियर क्षत्रिय। इस अध्याय में भगवान परशुराम के आविर्भाव के बारे में वर्णन किया जा रहा है, तो ये प्रसंग वहीं पे लेके जा रहा है जहां पे भगवान परशुराम जी का आविर्भाव होगा। तो वो कह रहे हैं कि आपका बेटा जो होगा, ऋषि मुनि ने कहा कि वो क्या होगा, खूंखार क्षत्रिय होगा, बहुत क्रोधित हो गए। तो उनकी पत्नी ने विचार किया और बहुत शांत भाव से जो है मधुरता से अपने पति को समझाया, सांत्वना दी कि आप क्षमा कर दीजिए, ये गलती हो गई है, ऐसा ना करें कि हमारा पुत्र जो है, यानी कि इनका जो पुत्र है कौन होगा, खूंखार क्षत्रिय होगा, हमारा पुत्र कौन होगा, खूंखार क्षत्रिय होगा। तो फिर उसके बाद फिर जब सत्यवती ने बहुत अनुरोध किया, आग्रह किया, तो ऋषि मुनि ने कहा ठीक है, तुम्हारा पुत्र जो है खूंखार क्षत्रिय नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा पोता जरूर होगा। और पुत्र कौन हुए, जमद अग्नि, और जमद अग्नि के पुत्र बने परशुराम जी। तो इस तरह से ये प्रसंग जो है वहां तक लेके जा रहा है जहां पे भगवान परशुराम के बारे में जिक्र होगा, वर्णन होगा, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया पूरे पृथ्वी में। तो इस प्रकार जो है हम देख सकते हैं कि क्या एक्यूरेसी है, क्या पूर्णता है, क्या परफेक्शन है उस समय, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जैसे आज समय में कलयुग में क्या हो रहा है कि लोग ने ऐसे ऐसे हॉस्पिटल या नर्सिंग होम खोल लिए जहां पर टेस्ट ट्यूब बेबी भी अवेलेबल है, टेस्ट ट्यूब फैसिलिटी है, यानी कि बिना स्त्री के या बिना पुरुष के जो है आपकी संतान हो सकती है। लेकिन उस समय ऋषि मुनि जो होते थे बड़े शक्तिशाली होते थे, और ये जो ऋषिक मुनि थे बहुत शक्तिशाली थे। ऋषिक मुनि के बारे में हमने इतना वर्णन सुना नहीं शास्त्रों में, कहीं सुना है, बहुत कम सुना है, और इनके बारे में तो सुना नहीं है। सौवरी मुनि के बारे में सुना है, दुर्वासा मुनि के बारे में हमने सुना है, दुर्वासा मुनि के बारे में सुना है, और इनके बारे में भी जब सुनते हैं तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध किया और वैकुंठ चले गए, भगवान ने वहां जाकर भी उनको क्षमा नहीं कहा किया, उन्होंने कहा कि मैं आपका कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो अपने भक्तों के पराधीन हूं, आप मेरे भक्त अम्बरीश के पास जाइए, वही कुछ कर सकते हैं। ये कह के हम बड़ी आसानी से इसको निपटा देते हैं। दुर्वासा मुनि कहां गए थे, वैकुंठ गए थे, कुछ साधारण बात है। या फिर सौवरी मुनि के बारे में कह देते हैं, वो तो मछलियों के यौन संबंध को देखकर जो है आकर्षित हो गए और उनका पतन हो गया, और राजा मंदाका की 50 बेटियों से उन्होंने विवाह किया सौवरी मुनि ने। बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से हम लोग कई बार कह देते हैं सौवरी मुनि जो जल के भीतर यमुना जी के भीतर जो है कई हजारों वर्ष के लिए तपस्या कर रहे थे, तो उस तपस्या को भी हम ना भूले। कहने का मतलब यही है कि साधारण ऋषि मुनि नहीं थे ये सब, साधारण योगी नहीं थे, वाकई में ये योगी हुआ करते थे, योग शक्ति हुआ करती थी इनके पास, सिद्धियां इनके पास होती थी। कर्दम मुनि ने क्या किया था, क्या किया था उन्होंने, उन्होंने पूरा जो है जो ग्रह ग्रह का निर्माण कर दिया अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए, पूरा एक ग्रह बना दिया, पूरा एक प्लैनेट बना दिया, जैसे कोई पूरा एक पृथ्वी बना ले तो कैसा होगा, और पृथ्वी जो है आप समझ लीजिए आकाश में जो है फ्लोट करने लगे, तो ऐसा एक जो है ग्रह बना दिया बहुत विशाल, जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं थी, महल था, झरने थे, खाने पीने के सामान थे, सब कुछ था। इशिता सिद्धि जिसको कहते हैं, योग शक्ति है, इशिता सिद्धि से कोई व्यक्ति ग्रह का निर्माण भी कर सकता है, किसी ग्रह का संहार भी कर सकता है। तो ये योग शक्तियां हुआ करती थी, इसलिए कई बार क्या देखा जाता है कि ऐसे ऋषि मुनियों को हमारे शास्त्रों में भगवान करके संबोधित किया जाता है। जैसे नारद जी को भी कई जगह पर आप देखेंगे कि भगवान करके संबोधित किया, हमारे श्रीमद् भागवत में भगवान नारद कहा गया कई जगह पर। तो इसलिए होता था ये, क्योंकि इनमें भगवान जैसा ऐश्वर्य होता था, किसी भी एक व्यक्ति में जिससे भगवान जैसा ऐश्वर्य है उसको भी भगवान करके संबोधित किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना गुरु के लिए साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्थता भावेत एव सद्भि, साक्षात हरि है गुरु, गुरु को साक्षात हरि बताया गया है। विश्वनाथ जी ठाकुर कह रहे हैं साक्षात हरि है गुरु। तो इसी तरह से जो ऋषिक मुनि है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मंत्र शक्ति से जो है ये पहले ही बता दिया कि आपका ये जो है ब्राह्मण पुत्र होगा, आपका क्षत्रिय पुत्र होगा, पहले से सारी योजना बना दी उन्होंने। मंत्र का उपयोग, मंत्र की शक्ति से कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी संभव था इनके लिए। तो इस प्रकार जो है सामान्य रूप से देखा जाता है कि माता का जो है आकर्षण, स्नेह, आसक्ति जो है अपने बच्चों के लिए बहुत अधिक होता है। प्रभुपाद ने कहा कि आध्यात्मिक जगत का अगर आप देखना चाहते हैं, रंच मात्र टिंग देखना चाहते हैं भौतिक जगत में, यहाँ के संबंधों में, तो एक ही एक संबंध है जिसमें आध्यात्मिक जगत का जो है आभास नजर आता है, लक्षण नजर आता है, और वो क्या है, माँ का जो है प्रेम होता है बच्चों से, जो कि बिना स्वार्थ के होता है, बिना किसी कंडीशन के होता है। कि माँ क्या करती है, बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, पिलाती है, वस्त्र पहनाती है, कोई हेतु नहीं होता है, कम से कम जब तक वो बड़ा ना हो जाए, अयुत की होता है। आध्यात्मिक जगत की परछाई भी नहीं, आध्यात्मिक जगत का एक टिंज जिसको कहते हैं रंश जो है माँ आप देख सकते हैं, किसमें देख सकते हैं, माता के प्रेम में देख सकते हैं, बच्चों के लिए जो होता है। लेकिन यहां पर तो कुछ उल्टा ही हुआ है, या माँ क्या कह रही है, सत्यवती की माँ क्या कह रही है, वो जो तुम्हारे लिए जो आहुति रखी है वो मुझे दे दो, तुम्हारा जो तुम्हारे पास जो है वो लगता है मुझसे अधिक अच्छा है, वो श्रेष्ठ है और बेटर है। तो ये तो है कलयुग का लक्षण है कि कलयुग में उल्टा हो जाता है। श्रीमद् भागवत में इसलिए लिखा है कि कलयुग में ऐसा समय आएगा कि माँ भी जो अपने बच्चे को मार के खा जाएगी, क्योंकि खाने को होगा नहीं, फीटस इसको कहते हैं। आज समय आप देखिए, जाके देखिए ताइवान में, कोरिया में, चाइना में, ऐसे कंट्रीज में जाके देखिए फीटस खाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं, जानते हैं वो फीटस जो है वो जन्म लेने से पहले ही उसको मार के खा जाते हैं उसको। तो ऐसा अभी से ही हो रहा है कलयुग में, तो आने वाले समय में क्या हो। तो इस प्रकार जो है ये, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि सत्यवती की माँ जो है वो विशेष यहां पर अनुरोध करती है सत्यवती से कि आप है वो आहुति जो है मुझे दे दो, और उनकी बेटी सत्यवती जो है उनके हृदय में भी जो है बहुत समर्पण का भाव है, विनम्रता है, तो दे दिया उन्होंने, तुरंत दे दिया, संकोच नहीं किया, विचार नहीं किया, तुरंत दे दिया, तो समर्पित थे। तो ये जो कलयुग है, देखिए इसमें क्या है, एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि क्या शिक्षा मिलती है हमें। शिक्षा ये मिलती है कि उनकी माँ जो है संतुष्ट नहीं है, वो तुलना कर रही है, और यही करते हैं हम लोग आज के समय में कलयुग में। कलयुग में तो हम बोलते हैं कि अस्ति एको ही महान गुणः, लेकिन कलेर दोष निधे राजन, कलयुग में दोष जो है महासागर के समान है, इट्स ओशन ऑफ फॉल्ट्स, बहुत सारे दोष, बहुत सारी गलतियां हैं यहां पर। तो होता क्या है यहां पे कि हम संतुष्ट नहीं होते, सेटिस्फाइड नहीं होते, कुछ भी हमें मिल जाए, कुछ भी हम प्राप्त हो जाता है उससे हम खुश नहीं है, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कुछ भी मिल जाता है फिर हम और मांग करते हैं। ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट है, जितने भी बिलबोर्ड्स है, जितने भी पोस्टर लगाए जाते हैं, या विज्ञापन जो दिया जाता है मीडिया के थ्रू दिया जाता है, तो उसका उस उद्देश्य क्या होता है, उसका आशय क्या होता है, उसका आशय यह होता है कि अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा है, आप इससे बोर हो चुके हैं, इससे हताश हो सकते हैं, आप ये खरीद लो, इससे संतुष्टि मिलेगी आप। ये गाड़ी पुरानी हो चुकी है, मारुति 800 पुरानी हो चुकी है, जैपनीज मॉडल जो हुआ करता था, अब तो दिखता भी नहीं है, तो अब आप नई चीज ले लीजिए, मार्केट में नई नई गाड़ी आती रहती है, नए नए वस्त्र आते रहते हैं, सेल्स का स्ट्रैटेजी यही है। मारुति कंपनी की जो है 18 मॉडल है गाड़ियों की, मारुति कंपनी की 18 मॉडल्स हैं गाड़ी के, 18 मॉडल्स है, 50% जो है मार्केट शेयर करता है मारुति, क्योंकि वैरायटी देते हैं, वैरायटी देने के कारण क्या है, तो सेल बढ़ जाता है। आज के समय में एम्बेसडर की कंपनी जो है या फीड की कंपनी लगभग बंद ही हो गई है। एम्बेसडर वाला जो है, मुझसे एक बार एम्बेसडर गाड़ी लेने जा रहे थे, तो उसका जो डीलर ही है, मैं बोला कि आप तो साधु नजर आते हैं लेकिन गाड़ी तो हमको दे देंगे, लेकिन हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ये गाड़ी मत लीजिए। एम्बेसडर के डीलर ने हमें बताया ये, और कहा महीने में मुश्किल से ये जो है, महीने में नहीं, उन्होंने कहा कि पूरे साल में मुश्किल से 100 गाड़ियां बिकती हैं, और वो भी किसको देते हैं, मिलिट्री वालों को देते हैं, और कोई नहीं खरीदता है वो गाड़ी। एम्बेसडर आउटडेटेड हो गई, उसका कोई नामो निशान नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे डिजायर जो है, हमारी जो आवश्यकता है, हमारी इच्छाएं जो है, उसका कोई अंत नहीं है। हमें सब कुछ चाहिए, नया 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 चाहिए। हम भूल जाते हैं एक नए व्यक्ति हैं जो हमेशा के लिए नए रहते हैं, हमेशा नए दिखाई देते हैं। आद्यम पुराण पुरुषम नवयोवनम च। राधिका रमण को जब भी देखिए नया है। हम ये तो नहीं बोलते हैं, हमारे भक्त रुक्मणी को बोलते हैं, राधिका रमण जी पुराने हो गए, लेट अस चेंज इट, हम ये डीडीस बड़े लेकर आएंगे, बहुत छोटे हैं ये। वही राधिका रमण है, वही उनका दर्शन हो रहा है, कई सालों से हो रहा है, नहीं कई सालों से उन्हीं का ही तो दर्शन कर रहे हैं हम लोग सब यहां बैठे, 35 साल जितना भी कह लीजिए, तब से दर्शन चला आ रहा है। और रोज कुछ ऐसे भक्त, हम में से कितने भक्त रोज मंगल आरती में आते हैं बताइए, बाहर से माता जी आती हैं, आप आते हैं, रोज मंगल आरती में आते हैं, बाहर से आते हैं, तो रोज आप बाहर से आके एक ही व्यक्ति का दर्शन करते हैं, राधिका रमण जी का दर्शन करते हैं, कृष्ण बलराम का दर्शन करते हैं आप, तो संतुष्टि होने के कारण आप ऐसा करते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में जो है एड दिखा दिखा के जो है, उसमें किसी कन्या का, किसी स्त्री का या चित्र दिखा के जो है वो उसको आकर्षित करते हैं लोगों को, और लोग देखते हैं मोबाइल फोन एक लेडी ने पकड़ा हुआ है स्मार्टफोन, और वो चित्र को देखने के निकट जाते हैं। उद्देश्य क्या होता है? स्मार्टफोन बेचना होता है। तो इस तरह से जो है क्या किया जाता है, आकर्षित किया जाता है, लोगों को आकर्षित किया जाता है, और लोग जो है इसमें नई नई इच्छाएं जो है व्यक्त करते रहते हैं। एक ही सामान आप रखेंगे दुकान में तो सेल कम हो जाता है, कस्टमर आके देखेगा अरे इनके पास तो कुछ वैरायटी नहीं है, विविधताएं नहीं है। कहने को तो हम फिलॉसफी कहेंगे कि हम सब एक हैं, लेकिन जब तक सामान खरीदना होगा तो वैरायटी चाहिए आप। वाह क्या बात है, जब भगवान की बात आती है तो हम सब एक है, जब सामान खरीदना है तो उसमें वैरायटी चाहिए, तब तक क्यों नहीं कहते सब एक है। मिठाइयों की दुकान में जाइए, नाना प्रकार की मिठाइयां हैं, मीठा मीठा तो मीठा ही होता है। किसी ने बड़ा अच्छा पूछा था एक बार, हमने पूछा था किसी से, हमने पूछा देखिए गुलाब जामुन रसगुल्ला रसमलाई जलेबी कुल्फी, गुलाब जामुन रसगुल्ला रसमलाई जलेबी कुल्फी और हलवा, गाजर का हलवा और मूंग का हलवा, सूजी का हलवा, खीर, लड्डू, संदेश मिष्टी दोए और क्या है, बर्फी, पेड़ा, ये सब क्या है बताइए, क्या है सब? ये सब मिठाई है। कैसे पता लगेगा कि अलग अलग है सारे व्यंजन जितने भी है बताए हमने, अलग अलग कैसे पता लगेगा आपको? खाकर ही तो पता चलेगा, जब तक खाएंगे नहीं पता नहीं चलेगा कि ये लड्डू है, ये रसमलाई है, सारा मीठा, लेकिन फिर भी कितनी वैरायटी है, देखिए कितनी विविधता है, लेकिन तब भी संतुष्टि मिलती नहीं है। खा खा के पेट साफ कर करके कितने साल बीत गए हैं, फिर भी जो है जीवा हमारी तृप्त नहीं होती है, खाते रहना चाहते हैं हम लोग। इनपुट और आउटपुट चल रहा है कई सालों से, कई वर्षों से इनपुट और आउटपुट चल रहा है, तब भी जो है मन को संतुष्टि मिली नहीं है। फीस्ट दान सुनते लाट टपकने लगती है और यही पूछते हैं आज क्या बना है फीस्ट में। अरे ठाकुर जी को भोग नहीं लगने था पहले मन से खा लिया 10 किलो हलवा या मिठाई जलेबी जो भी है, संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, बिल्कुल तृप्ति नहीं है। और स्थिति ना होने के कारण क्या है, हम लोग हताश रहते हैं, बोलते हैं पशु समाज में क्योंकि संतुष्ट क्यों है, क्योंकि वो अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार जो है उतना ही ग्रहण करते हैं जितना कि उनके लिए निश्चित हो चुका है, इसलिए उनके लिए कोई हॉस्पिटल है नहीं। हम लोग का क्या है, रिक्शा में बैठा हुआ व्यक्ति एक रिक्शा चला रहा है और सोच रहा है देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं या वर्ल्ड का रिक्शा साधनी बन जाऊं। हर जो है राजनीतिक या पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में एंटर करते ही सोचता है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। और प्रधानमंत्री जो है 125 करोड़ या 150 करोड़ की आबादी में एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। इच्छा सबकी है, क्योंकि निश्चित नहीं है, प्रारूप में नहीं है, भाग्य में नहीं है, उसके बावजूद भी इतनी सारी इच्छाएं जब करता है कोई, तो इसके लिए हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। क्योंकि चिंता बहुत कर रहे हो, है नहीं आपके भाग्य में, इच्छा कर सकते हो आप बहुत कुछ, मनुष्य जीवन में ये समस्या है, यही एक लैकुना है। तो डिजायर आपकी बहुत सारी पनपी हुई है, मिलने वाला आपको उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो, इसलिए क्या है, तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, इसलिए टेंशन के लिए दवाइयां खा खा के पूरा जीवन बीत जाता है। तो इस प्रकार जो है कोई सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। लेकिन देखिए ये समस्या जो है, समस्या क्या कह लीजिए, आध्यात्मिक जगत में हमारे परम भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही है। कैसे, कृष्ण भी जो है कभी संतुष्ट नहीं होते, सेवा लिए जा रहे हैं ले जा रहे हैं, लेकिन उनको उनका आनंद बढ़ता ही रहता है और वो और चलता रहता है। इसलिए गिरिराज में भी गोवर्धन की लीला में यही देखते हैं, अनुकूल का मौसम मनाया जा रहा है और गिरिराज जी खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, लाए जाओ लाए जाओ लाए जाओ। तो उसी आध्यात्मिक जगत की परछाई है, भगवान में है शुद्ध रूप में है, यहाँ विकृत रूप में है, यहाँ पर जो है मिलता नहीं है, गिरिराज जी को ठाकुर जी को सब कुछ मिल जाता है, यही अंतर है। वहां आप अच्छा प्रकट करते हैं तो मिल जाता है, या अच्छा प्रकट करते नहीं मिलता है, और नहीं मिलने के कारण क्या होता है, हताश रहते हैं हम लोग, परेशान रहते हैं और लगे रहते हैं फिर, और इस तरह से पूरा हमारा जीवन बीत जाता है। तो हम शुरू शुरू में याद है, हम लोग जब उसमें थे कॉलेज में थे, तो वहां पे कॉलेज लगभग समाप्त हो चुका था हमारा ग्रेजुएशन, तो उस समय नया नया कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर के कोर्स शुरू हुए थे, कई लोग कंप्यूटर के कोर्सेस, इंडिया एजुकेशन सेंटर है और ये है अपना क्या नाम इसका NIIT जो है उसी समय कंप्यूटर का बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया था बड़े स्केल में, तो ये सब कंप्यूटर के कोर्सेस किया करते थे। और डेस्कटॉप कंप्यूटर आया था जिसमें पहले तो ब्लैक स्क्रीन था और फिर धीरे 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 वो ग्रीन कलर का हुआ, उसे ग्रीन कलर का बैकग्राउंड हुआ करता था, और इस तरह से कंप्यूटर्स आना शुरू हुए थे और कंप्यूटर पर भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। बोले कि कंप्यूटर पर हताश होकर देखे कि देखा कि पॉकेट कंप्यूटर भी आ गए, छोटे छोटे साइज के भी कंप्यूटर आने लगे, पॉकेट कंप्यूटर भी आने लगा, यानी कि जैसे जैसे हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं अलग अलग तरह की विविधताएं हम देखते जाते हैं। और उसके बाद धीरे लैपटॉप का जमाना आ गया, लैपटॉप में भी अलग अलग साइज के लैपटॉप आने लगे, कोई बड़े कोई छोटे कोई मीडियम लैपटॉप साइज, अलग अलग लैपटॉप, और टैब आने लग गया, टैब आने लग गया, फिर आईपॉड आने लग गया, आईपैड आने लग गया, एप्पल ने आईपैड निकाला था 2 जो बहुत फेमस हुआ था एप्पल का। और इस तरह से क्या है कि संतुष्टि ना होने के कारण जो है क्या होता है कि पड़ोस में देखते हैं, घर वालों की बात देखते हैं, ये रिश्तेदारों के बात देखते हैं कि कोई नई चीज़ आई है तो हम भी खरीद लें, पड़ोस में गाड़ी खड़ी है बड़ी, ऑडी खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है, BMW, तो घर में पत्नी बोलती है कि देखिए हम तो एल्टो में ही घूम रहे हैं पिछले 10 साल से, कुछ तो हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए, हमारी फैमिली भी बड़ी हो गई है, पहले एक बच्चा था, 2 हो गए 3 हो गए, इसलिए कई घरों में हम देखते हैं कि अगर 4 बच्चे हैं तो 4 गाड़ियां हैं, हर बच्चे के लिए गाड़ी रखी है, एक के लिए मर्सिडीज, एक के लिए BMW, एक के लिए ऑडी, एक के लिए और क्या कहते हैं उसके लिए मारुति, सबके लिए अलग अलग गाड़ियां हैं, होता नहीं होता है बड़े घरों में। और जाना कितना है लोगों ने, एक ही व्यक्ति ने जाना है, ट्रैफिक जाम क्यों नहीं होगा, कोई शेयर करना नहीं चाहता है, कोई पूल करना नहीं चाहता है, और जो है एक एक व्यक्ति जाएगा एक गाड़ी में, 4 लोग जा रहे हैं 4 गाड़ियों में, 4 लोग ही गाड़ियों का पेट्रोल फूंक रहा है, कोई चिंता नहीं करता है, ऊर्जा मिल रही है, शक्ति मिल रही है, फ्यूल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, क्रूड मिल रहा है, कहां से मिलेगा आपको पेट्रोल, फैक्ट्री से, फैक्ट्री में नहीं मिलता है पेट्रोल, पेट्रोल तो नेचर से लेना पड़ता है, ONGC का जो वहां पर बॉम्बे हार्बर में जो है ड्रिलिंग में जो होता है, जहां पे वो ड्रिलिंग जब करते हैं समुद्र के भीतर 9000 फीट डीप जाना पड़ता है, 9000 फीट डीप जाने के बाद तेल मिलता नहीं है, 9000 फीट डीप जाने के बाद ड्रिलिंग शुरू होता है, और ड्रिलिंग अगर होते हुए तेल नहीं मिला तो क्या करेंगे आप गाड़ियों पर, क्या बताइए, जितनी भी आपकी मोटर इंडस्ट्री है ना, बुरा मत मानिएगा, सब बंद हो जाएगी, मजा आ जाएगा, दिल्ली में कोई पोल्यूशन नहीं होगा, वापस आ जाएंगे, पर ढूंढेंगे कहां है बैल, कहां है भैंस, कहां है घोड़ा, पुनर्मूषी का बाबा, कहां है घोड़ा, सारे वाहन याद आने लगेंगे जिनको हम काट के मार के फेंक चुके हैं। तो पूरी तरह से हम लोग निर्भर है भगवान के ऊपर, भगवान की प्रकृति के ऊपर, और फिर भी अकल नहीं आती हमें, और डिमांड सब बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, गाड़ियां चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन क्या है, हम भूल जाते हैं इसका सोर्स क्या है, इस गाड़ी को चलाएंगे कैसे, इसके बारे में कभी विचार ही नहीं हम लोग करते हैं। और दूसरा एक और है मूवीज, आजकल आजकल लोग मूवीज देखने जाते हैं। एक आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो एक बीमारी कहते हैं, एक बीमारी है साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, ये साइकेट्रिक साइकिक डिजीज है, उसको कहते हैं पोस्ट मूवी डिप्रेशन, पोस्ट मूवी डिप्रेशन PMD। तो पोस्ट मूवी डिप्रेशन क्या होता है कि मूवी देख रहे हैं और मूवी बड़ी अच्छी चल रही है और मूवी में आप देख रहे हैं कि हीरो हीरोइन जो है एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं और फिर फाइट का सीन आ गया और वहां पर ऑडियंस में जो लोग बैठे हैं, हमें याद है एक बार हमारे साथ हमारी मासी जी भी गई थी, वो दो मासी जी जो वृंदावन में है, तो उनको तो हमने कई बार देखा है मूवीज देखते हुए, हमें याद है, और जब मूवी देखें तो रोने लग जाएंगे एकदम से, अरे अरे देखो क्या हो गया, बेचारा मर गया, ये वो रो रहे हैं पूरे मूवी में, रो रही है और हंसने की सीन में हंस रही है। मैंने कहा मूवी है आप रो के रहे हैं, ये हमारे साथ थोड़ा घटना हो रही है, ये तो सारा फिक्शन है, सब इल्यूजन है जो दिखाई दे रहा है पर्दे पे। रोने लग जाते थे और हंसने लग जाते थे। तो क्या होता है कि पोस्ट मूवी जो क्या कहते हैं डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि उसके बाद मूवी देखने के बाद लोग क्या करते हैं, घर जाके कंटेम्पलेट करते हैं। जितना ये मूवी इल्यूजन क्रिएट करता है उतना कोई जरिया नहीं जिसके द्वारा इल्यूजन क्रिएट किया जा सके, इतना भयानक इल्यूजन आपके अंदर क्रिएट कर देगा, आप इससे सारे डिफेंसिव हो जाते हैं और आंखों को टिक टका लेते हैं, जैसे भंवरा जो है वो फूल के ऊपर अपनी नजरें टकाए हुए खड़ा रहता है, या कीट पतंगा जो है अग्नि की तरफ देखता रहता है, अग्नि की लपटों की तरफ देखता रहता है और अग्नि की तरफ बढ़ता रहता है। इसी तरह से हमारी आंखें जो है टिक जाती है, हम देखते हैं शाहरुख खान को देखते हैं या फिर किसी मूवी एक्ट्रेस को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं, आंखें वहां टिकी रह जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसान, उसके बाद क्या होता है, ध्यायतो यानी कि कंटेम्पलेट करना शुरू कर देते हैं हम लोग, कंटेम्पलेशन शुरू हो जाता है, वो आसक्ति हो जाती है, आसक्ति हो जाती है तो काम वासना जागृत हो जाती है, वो इच्छाएं पूरी जब नहीं होती है तो क्या होता है, मोह उत्पन्न होता है। और देखते 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 व्यक्ति जब देखता है कि वास्तव में मैंने जो देखा मुझे क्या नहीं मिल सकता, ये क्या मैं इतना बड़ा आदमी नहीं बन सकता हूं। जैसे एक मूवी में दिखाया था कि एक जो मूवी स्टार है, हमने रिसेंटली उसमें ड्रामा भी किया था, वो जो हीरो है वो बहुत गरीब व्यक्ति होता है और उसकी लॉटरी लग जाती है और लॉटरी लग के बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, तो देखने वाले क्या सोच रहे हैं, क्या हमारी लॉटरी नहीं लग सकती इस तरह से, एकदम झड़े की झटके में अमीर बन जाए रातों रात। तो इस तरह से क्या है कि डिजायर जो है इतने ज्यादा क्या कहते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो जो आपकी वासना है और संस्कार है वो इतने तीव्रता से जागते हैं इन मूवीज को देखने से, और सारा ध्यान सारा विचार वही होता है। और जिंदगी भर जिसने मूवी देखी है तो क्या हुआ सोच के देखिए उसका, यम्यम वापि स्वर्ण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः, पूरी तरह से भावना भावित हो जाएंगे हम लोग अंतकाल में, जीवन के अंतकाल में आपको केवल क्या इसकी चीज का स्मरण होगा, शाहरुख खान का स्मरण होगा या कोई मूवी एक्ट्रेस, हम तो जानते नहीं आजकल कौन है, कितना समय हो गया ये सब देख कर हुए। तो ये क्या है कि आप देख देख के जो है पूरा वशीभूत हो जाते हैं, तो इनके पास सिद्धि है, मीडिया वालों के पास सिद्धि है, मूवीज बनाने वालों के पास सिद्धि है, ये सिद्धि जानते क्या, इसको कहते हैं वशीता सिद्धि, पूरी तरह से आपको वशीभूत कर लेते हैं और आप उस जाल में फंस जाते हैं जिसको इंटरनेट कहा जाता है, और इंटरनेट मतलब जो है आंतरिक जाल, उस जाल में फंस जाते हैं, निकलना बड़ा मुश्किल है बाहर, चिपके रहते हैं लोग इंटरनेट पे, बैठे रहते हैं पूरे दिन, फेसबुक में लगे हुए हैं पूरे दिन, लगे हुए हैं स्मार्टफोन में, लगे हैं पूरे दिन मूवीज के सामने, नजरें टिकाई हुई है, नजरें हटती नहीं है। तो इस तरह से क्या है कि हमारी इच्छाएं जो है कभी पूरी नहीं होती, यानी कि हमें पता होना चाहिए जो अगर हम वास्तव में कृष्ण भावना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो मेटेरियल नेचर है किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, इसका संचालन कैसे हो रहा है भौतिक प्रकृति का, इसके पीछे विज्ञान क्या है, इसको जब तक नहीं समझेंगे हम कैसे आगे बढ़ेंगे भक्ति में। प्रभुपाद देखिए क्या एक्सपर्ट थे, प्रभुपाद एक बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में थे, जगन्नाथ जी के रथ पर बैठे हैं और एक अपने शिष्य से पूछे जो सन्यासी थे, और सन्यासी शिष्य से प्रभुपाद बोलते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लेडीज इन न्यूयॉर्क, प्रभुपाद कहते हैं What do you think about the ladies in New York? यहाँ जो बहुत सारी स्त्रियां खड़ी हैं, बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? तो सन्यासी बिल्कुल सुन के हैरान हो गए कि प्रभुपाद क्या पूछ रहे हैं। प्रभुपाद, What do you think about the ladies in New York? तो वो सन्यासी कुछ बोल नहीं रहा था, उनके क्या बोलो, मैं बहुत सुंदर लगती है, क्या बोलो मैं, बोले सन्यासी हो कि क्या हो? तो वो सोच पड़ गए सन्यासी शिष्य जो थे, What should I answer? What do you think about the ladies in New York? प्रभुपाद ने कहा, Aren't they beautiful? क्या वो सुंदर नहीं है? प्रभुपाद ने कहा। तो वो सन्यासी ने वो क्या सोचा कि हाँ बोलो या ना बोलो, क्या बोलो मैं, Aren't they beautiful? तो उसके बाद प्रभुपाद ने कहा, देखो यस दे आर ब्यूटिफुल, प्रभुपाद ने, दे आर ब्यूटिफुल, यू नो दिस ऑल दिस स्काईस्केपर बिल्डिंग्स, प्रभुपाद ने कहा, जितनी बड़ी बड़ी इमारतें आप देख रहे हो, जितनी बड़ी बड़ी आप एक गाड़ियां देख रहे हो, जितने जितने बड़े बड़े आप मॉल्स देख रहे हो, जितने बड़े बड़े यहाँ पर पैलेस देख रहे हो, यानी कि मैंशंस देख रहे हो, प्रभुपाद ने कहा, ये जानते हैं क्यों है वो? ये देख रहे हो कितने लोग, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं, 7, 7:30, 8 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, एंड दे वर्क फॉर 10 आवर्स एवरी डे नॉन स्टॉप, देर इज नो टाइम फॉर ईटिंग एंड स्लीपिंग ऑल्सो। जानते क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू इंप्रेस देम, दे वॉन्ट टू इंप्रेस ऑल दिस ब्यूटिफुल लेडीज, दैट इज वाई दिस ऑल दिस स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग्स हैव कम इन न्यूयॉर्क। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, इतनी सारी बिल्डिंगें बनी है, इतनी सारी इमारतें बनी है, क्योंकि ये लोग जो अमेरिकन है, इन स्त्रियों को, इन लेडीज को जो है खुश करना चाहते हैं, दैट इज द रीजन दे आर वर्किंग सो हार्ड, स्टिल देयर डिजायर्स आर नॉट सैटिएटेड, उनकी इच्छाएं अभी तक जो है पूरी नहीं हुई है, इसलिए मेहनत करते जा रहे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, केवल सेटिस्फैक्शन कभी मिलता नहीं हमें, नहीं संतुष्टि कभी नहीं मिलती है। जैसे भगवान गीता में क्या कहते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति सर्व सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पुराण। तो ब्रह्म भूत स्थिति में कौन होता है? ब्रह्म स्थिति में जो होता है तो क्या होता है, वो कभी शोक नहीं करता है, कभी आतुर नहीं होता है, लेकिन जो आतुर होते हैं और शोक करते हैं वो ब्रह्म भूत नहीं होते, वो होते हैं भूत, दे आर घोस्टली ऑन्टेड, भूत ने जैसे पकड़ लिया हो किसी को, इस तरह से क्या होता है, दिन रात वो इंद्र तर्पण में लगे रहते हैं और भूल जाते हैं कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है। मतिम न कृष्ण परतो सतो भाग मितो विपद्य घृत प्रतानम अदांत गोविर विशदान तमिश्रम पुनः पुनः चरवित चरणानाम। वही कर रहे हैं जो कर चुके हैं पहले, सेटिस्फेक्शन भी मिलता नहीं, संतुष्टि मिलती नहीं है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो उनकी मां थी यानी ऋषि की जो सास थी, उनका केवल विचार था, उन्होंने सोचा कि हाँ मेरी बेटी को जो आहुति मिला है वो ज्यादा बेटर होगा, बेटर जो आहुति है वो मैं ले लेती हूँ, केवल विचार था। लेकिन दांत ऋषि मुनि जो है इक्वल पावर डाला हुआ था, दोनों ही मंत्रों में इक्वल पावर डाला हुआ था उन्होंने, लेकिन केवल विचार था, एक सोच आ गया कि मेरी बेटी को लगता है और अच्छा मिला है और श्रेष्ठ जो है आहुति मिली है, मैं उससे ले लेती हूँ। तो इच्छाएं जो है कभी समाप्त नहीं होती हमें, हमारी जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मन की तपस्या क्या है, मन की तपस्या जानते क्या है? मन की तपस्या है, भगवान कह रहे हैं सरलता, संतुष्टि, पहले क्या बोल रहे हैं, सेटिस्फैक्शन, सिंप्लिसिटी, सरलता, ग्रेविटी, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब आत्मसंयम, ग्रेविटी का मतलब क्या है, गंभीरता। और इस तरह से ये क्या बता रहे हैं कि तपस्या है मन की, यानी कि अपने सत्ता का, अपने अस्तित्व की का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन, ये सब क्या है, मन की तपस्या है। सरल भाव रखना, ये तपस्या है मन की। सरलता का मतलब क्या है कि सरलता और संतुष्ट होने का मतलब है कि जो भी हमें मिला है उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए। और इच्छा प्रकट करने का क्या लाभ, जैसे भगवान महादेव क्या बोले बलि महाराज को, भगवान महादेव क्या बोले, अगर मुझे तीनों लोग मिल जाए मुझे तो क्या मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी? आप मुझे देना चाहते हो तीनों लोग का सुख, देना चाहते हो तीनों लोग का सुख, अगर मिल भी जाएगा तो सारी इच्छाएं मेरी समाप्त हो जाएगी? नहीं होंगी, और इच्छा करूंगा मैं, इसलिए मैं जितना मांग रहा हूं उतना ही दो मुझे। तो इसलिए क्या है कि सरलता को नहीं त्यागना, सिंप्लिसिटी को नहीं त्यागना है। प्रभुपाद जी बड़े सिंपल थे, प्रभुपाद जी बहुत सरल स्वभाव के थे। देखिए भक्ति वेदांत मेनोर जब मिला था और प्रभुपाद जी की व्यास पूजा बनाई गई थी वहां, व्यास पूजा में सभी भक्तों ने, कई भक्तों ने आकर नाना प्रकार के भेंट दिए श्रील प्रभुपाद जी को, और प्रभुपाद जी ने प्रसाद लेने बैठे, नाना प्रकार के व्यंजन प्रभुपाद जी को ऑफर किए गए थे, लेकिन प्रभुपाद जी इतने सरल थे और प्रसाद लेते हुए देखते था कोई तो ऐसा लगता था कि जैसे कि गांव में कोई बैठा हुआ है अपनी झोपड़ी के अंदर और भोजन कर रहा है, इतना सरल लगता था प्रभुपाद जी को देखते थे। प्रभुपाद जी प्रसाद लेते थे, आप एक वीडियो में देखेंगे प्रभुपाद प्रसाद कैसे ले रहे हैं, रूम के एक कोने में जाके बैठ गए प्रभुपाद, और उस समय कोई कमरे में नहीं है, प्रभुपाद चुपचाप बैठ के जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। वेरी सिंपल। बड़ी बड़ी मीटिंग्स प्रभुपाद जी करते थे, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन प्रभुपाद चला रहे थे, लेकिन सीधा मायापुर में जाते तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं गंगा जी में जा रहा हूं स्नान करने के लिए, और एक सरल व्यक्ति की तरह जो है, जैसे हम लोग जाते नहाने के लिए, प्रभुपाद जी वहां नहाने के लिए चले जाते थे अपने शिष्यों के साथ। और यहां तक हम देखते हैं कि जब प्रभुपाद अमेरिका में जब गए थे, सैली अग्रवाल के घर पर ठहरे थे फिलाडेल्फिया में, तो वहां पर सैली अग्रवाल के घर ठहरे, गोपाल अग्रवाल के घर में ठहरे, तो जानते क्या हुआ, तो प्रभुपाद जब नहाने गए तो बाहर से सैली अग्रवाल बोलती है, स्वामी जी प्लीज यूज शवर। तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, वो प्रभुपाद जी के हाथ में एक लोटा था और लोटा लेके जैसे बाल्टी से लेके नहाते, इस तरह से प्रभुपाद नहाने लगे थे। प्रभु तो कहती है, सैली अग्रवाल कहती है, स्वामी जी आप शवर यूज करिए, पानी सारा बाहर आके गिर रहा है। फिर प्रभुपाद क्या करते, अपना कपड़ा धोते, जैसे कि नॉर्मली हम धोते हैं, वॉशिंग मशीन का तो कुछ आइडिया नहीं था, तो प्रभुपाद जी अपना कपड़ा खुद धोते थे, तो कपड़ा धो रहे तो उसकी छींटे बाहर आ रही थी। तो प्रभुपाद को कहते थे सैली अग्रवाल, स्वामी जी प्लीज यूज अ वॉशिंग मशीन, आप वॉशिंग मशीन यूज करिए, आप अपने हाथ से ऐसा क्यों कपड़ा धो रहे हैं। तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, बिग इन अमेरिका उन्होंने कभी देखा नहीं था कि हाथ से भी कपड़े धोए जाते हैं या जो है लोटा लेके नहाया जाता है। और एक बार क्या हुआ, इंग्लैंड में भी, इंग्लैंड में क्या है, यूरोप में, अमेरिका में जो वॉशरूम्स होते हैं वहां पे बड़े बड़े टब होते हैं, तो वेस्ट में क्या लोग टब में नहाना बड़ा पसंद करते हैं, आजकल टब का भी जो है कल्चर आ गया है हमारे इंडिया में भी, बड़े बड़े टब होते हैं, बड़े बड़े साइज के टब होते हैं, बड़े बड़े टैप्स होते हैं। और प्रभुपाद क्या करते थे, वो टब दिया प्रभुपाद को नहाने के लिए, तो प्रभुपाद ने क्या किया, उसमें बाल्टी रखी और लोटा लिया, उसके अंदर बैठ के प्रभुपाद नहाए। सो प्रभुपाद बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तो ये जो सिंपलिसिटी है, कहने का मतलब ये है कि वी शुड नेवर फॉरगेट द सिंपलिसिटी, यानी कि कहने का मतलब है कि क्या होता है कि जो सिंपल थिंग्स हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के, उसी में हमें आनंद ढूंढना है, उसी में हमें संतुष्टि ढूंढनी है, तब एक्चुअली हमारा प्रोग्रेस का पता लगेगा। जैसे मंगल आरती, मंगल आरती वेरी सिंपल, आप आते हैं रोज वही गुरु अष्टकम गाते हैं, वही तुलसी आरती गाते हैं, सेम ट्यून में गाना है, मॉर्निंग ट्यून में गाना है, ट्यून में बदलिए आप, ये कौन से ट्यून में आप गा रहे हैं, वेरी वेरी सिंपल, नो ऑर्केस्ट्रा, नो गिटार, नहीं, मॉर्निंग मंगल आरती में शुड बी वेरी वेरी पीसफुल, सेम मंगल आरती, सेम ट्यून। और प्रभुपाद जी का आप देखेंगे महामंत्र कीर्तन करते हैं, प्रभुपाद सेम ट्यून में गा रहे हैं, एक ही ट्यून में प्रभुपाद गा रहे हैं, क्योंकि उनको सब्सटेंस में आनंद मिल रहा है, फॉर्म ही नहीं है। फॉर्म प्रभुपाद जी अपने प्रचार के लिए फॉर्म के ऊपर निर्भर नहीं थे, प्रभुपाद जी तो सब्सटेंस के ऊपर निर्भर थे, और सब्सटेंस कौन है, स्वयं कृष्ण। तो प्रभुपाद जी निर्भर थे कृष्ण के ऊपर, तो उन्होंने जो है इस पर अपनी निर्भरता नहीं दिखाई। कहने का मतलब है, लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए हम अलग अलग ट्यून में तो गा लेते हैं, लेकिन वास्तव में कहीं भूल ना जाए कि एसेंस क्या है। एसेंस है कि लोगों को हमें हरिनाम देना, ये सबसे महत्वपूर्ण। तो नहीं तो क्या होगा कि, क्योंकि कृष्णा नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, हमारे कृष्ण तो वृंदावन के हैं, बहुत सिंपल है ठाकुर जी हमारे, हम कृष्ण जो वृंदावन में है उनकी पूजा करते हैं, द्वारकाधीश की नहीं। हमारे वशिष्ठ लॉर्ड, हमारे इष्ट कौन है, वृंदावन के कृष्ण है। और अगर द्वारकाधीश की स्थापना हम कर भी देते हैं तो उनको भी बांसुरी पकड़ा देते हैं, हम लोग अपने इष्ट को कभी नहीं भूलते हैं। नहीं, किसी ने बोला, अरे द्वारकाधीश को आपने बांसुरी पकड़ाई हुई है लॉस एंजलिस में, ये क्या बात है। हमने कहा चेतन चरता मत पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं, सर्वत्र होए पे निज इष्ट देव स्फूर्ति, सब जगह जो शुद्ध भक्त होता है भगवान का, वो अपने इष्ट को देखता है, द्वारकाधीश में भी अपने वृंदावन कृष्ण को देखता है। ये है प्रोग्रेस, ये है एडवांसमेंट। तो बांसुरी इसलिए ठाकुर जी को प्रभुपाद जी ने वहां भी पकड़ा दिया, नौसिंह से पकड़ा दिया, क्योंकि अपने इष्ट का दर्शन कर रहे हैं, वृंदावन कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वृंदावन कृष्ण जो है बहुत सिंपल है, सिंपल धोती पहनते हैं, पीतांबर वस्त्र पहनते हैं और उनको बांसुरी पकड़ाई जाती है और सर में एक पगड़ी होती है और वैजयंती माला होती है गले में और एक छड़ी पकड़ा दी जाती है गौ चराने के लिए और माता श्रद्धा जंगल में भेज देती है, जाओ जी चराइए गाय जाके। पूरे दिन धूप में घूमते रहते हैं बिना चप्पल के बिना पादुका के, कितने सरल है हमारे ठाकुर जी। तो जैसे हमारे कृष्ण है वैसे हमें बनना पड़ेगा अगर हम कृष्ण के भक्त हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सिंपल थिंग जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस को कभी भूलना नहीं चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमें मान लीजिए देखिए जो आपके पास क्षमता है जो आप हैं वही हम बने रहें, कुछ नया बनने की आवश्यकता नहीं है, नया बनने का प्रयास मत करिए। ये बस सोचिए कि अरे ये देखिए सोशल मीडिया में इनका बड़ा लाभ हो रहा है, इनके बहुत व्यूअर्स हैं तो मैं भी वैसा करूंगा, मैं भी अपनी रिकॉर्डिंग करूंगा, मैं भी डिस्प्ले करूंगा, लोग मुझे भी जाने। भैया आप जो हो वो ही रहो, कुछ नया बनने की कोशिश मत करो। सब्सटेंस को भूल जाओगे, फॉर्म में फंसे रहोगे, तत्व को भूल जाओगे कि कृष्ण भावना भावित होना है, यश के पीछे भागे रहोगे, रिकॉग्निशन के पीछे भागे रहोगे, दूसरों की नकल मत करो, जो हो वो हो ही रहो, उसी में ही प्रोग्रेस होगा, उसी में ही भक्ति आपकी बढ़ेगी, उसी में ही प्रचार होगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि आजकल जो है वो दिखावे का जमाना हो गया है। हाँ जिसके पास वो क्षमता है जिसके पास योग्यता है निश्चित रूप से करें, लेकिन जिसके पास नहीं है और जिसके पास जो है भगवान ने जिस परिस्थिति में मैं रखा है, भगवान ने जो मैं सुविधाएं दी है उन्हीं सुविधाओं को लेके भगवान की सेवा में लगाकर हमें खुश रहना चाहिए। यही श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं अनासक्तस्य विषयान यथारम उपुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुचते। जैसे कि खोला मिश्र श्रीधर, खोला मिश्र श्रीधर को बुलाया नहीं गया, वो पीछे ही खड़े रहे, बहुत विनम्र थे, ऐसा लग रहा था कि कोई उनको आगे बुलाई नहीं रहा। चैतन्य महाप्रभु ने उनको रिकॉग्नाइज कर लिया। चैतन्य महाप्रभु ने खोला बिचा श्रीधर को कहा कहा है खोला बिचा श्रीधर कहा है, स्वामी बुलाए चैतन्य महाप्रभु, क्या तुम्हें चाहिए बताओ श्रीधर, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, सब लोग का इंद्र बना दूंगा तुम्हें, मैं सारी सिद्धियां दे दूंगा, मुक्ति दे दूंगा मैं तुम्हें, तीनों लोगों का तुम्हें सुख मिल सकता है, सारी योग शक्तियां तुम्हें मिल सकती हैं। खोला बिचा श्रीधर ने क्या बोला जानते हैं? खोला बिचा श्रीधर कहते हैं मैं तो चाहता हूं कि हर जन्म में हर परिस्थिति में हर समय जिस तरह से आप मेरे पास आए थे और मेरे से आके आपने केले छीने, इसी तरह से मैं चाहता हूं कि हर बार आके यही लीला आप करें और यही देखकर मैं आनंद में हूं, इससे और अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या भाव था देखिए कोलमेश्वर श्रीधर का, नहीं कहने का मतलब है कि शुद्ध भक्ति के स्तर पर आने के लिए हमें इन सबसे परे जाना होगा, वास्तव में तत्व को समझना पड़ेगा, सब्सटेंस को समझना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है, स्किल्स को यूज किया जा सकता है भगवान की सेवा में, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन एसेंस को कभी नहीं भूलना है। कीर्तन अगर हो सकता है केवल मृदंग और करताल से और 10 यंत्रों की क्या आवश्यकता है, अगर नहीं मिल रहा है तो भूल जाओ उनको। चैतन्य महाप्रभु जब निकलते तो उनके हाथ में खोल था और उनके पास खोल था और करताल था बस। अगर इंस्ट्रूमेंट्स है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है कि कीबोर्ड भी होना चाहिए हमारे पास, गिटार बजाने वाले भी होने चाहिए, वायलिन भी होना चाहिए, ताकि क्या हो सारा ध्यान जो है इंस्ट्रूमेंट्स पर चला जाए और लोग हरिनाम को भूल जाए। तो इसे बड़ा सावधान होना चाहिए हमें, जैसे जैसे सुविधाएं हमारी बढ़ती जा रही है, यानी कि माया का जो ऐश्वर्य वैभव बढ़ता जा रहा है, हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए कि हम एसेंस को तत्व को ना भूल जाए कि तत्व यह है कि हमें कृष्ण भावना भावित होना है। यह है सिद्धांत, समता संतुष्टि, यह है मन की तपस्या। संतुष्ट होना पड़ेगा हमें जो भी हमें मिल रहा है, जिस परिस्थिति में भी भगवान हमें रखे उसी परिस्थिति में रहकर ही हमें भगवान की सेवा करनी है, भक्ति करनी है, इसे नहीं भूलना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग भटक जाते हैं, कौन कितना फेमस हो रहा है, कौन किसको कितना यश मिल रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, राइट? हमने ऐसे भी देखे हैं कई ऐसे वक्ता हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके व्यूअर्स बहुत कम है। अगर आप जाओगे सोशल मीडिया में जाओगे तो उनके व्यूअर्स बहुत कम है, 100 भी नहीं होंगे, 200 भी नहीं होंगे, लेकिन भगवान की नजर में वो भगवान जानते हैं कृष्ण, वो उनके व्यूअर हैं, वो उनको देख रहे हैं, वो उनके हरि कथा को श्रवण कर रहे हैं निरंतर। कौन राधिका रमन जी सुन रहे हैं, उससे बड़े व्यूअर कोई नहीं है, उससे बड़ा लाइक कोई नहीं है। समझ रहे मेरी बात को आप? तो इसलिए क्या है कि अपनी सेवा के द्वारा, अपने ऐश्वर्य के द्वारा, विद्वत्ता के द्वारा, टैलेंट के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि अब कीर्तन कम करें तो किसके लिए करें, केवल कृष्ण के लिए करें। केवल कृष्ण के लिए कीर्तन करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं रिकॉग्निशन चाहते हैं, हम लोग कोई भी सेवा करना चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, गुरु की नजर हमारे ऊपर पड़ जाए, लोग हमारे लिए तालियां बजाएं, लोग हमें पहचाने, लोग हमें जाने। नहीं, हमारी इच्छाएं बहुत सारी इच्छाएं भरी पड़ी है अभी तो। शुद्ध भक्ति के सर पर आना इतना आसान नहीं इतना आसान नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्ति के लिए, इसलिए कई बार आप जब बैठते हैं, कई इसलिए एक बार एकांत में जाना चाहिए, कई एक हफ्ते में या महीने में एक दो बार जाएंगे श्रीधाम वृंदावन, जाइए और एकांत में बैठकर भजन करके देखिए, देखिए कितना मन लगता है आपका भजन में। क्या आपका वहां भजन करते हुए चिंताएं होती है कि कब मेरा नया क्लिपिंग तैयार हो जाएगा, सोशल मीडिया में कितने व्यूअर्स होंगे उसका, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरि नाम लेते हुए यही चिंता हो जाती है, क्योंकि आपका ध्यान भटक गया, माया ने आपका ध्यान भटका लिया, माया विजयी हुई, माया की जीत हो गई। अब आपकी संतुष्टि, आपको सुख किससे मिल रहा है, आपको सुख किससे मिल रहा है, अब आपको यश सुख मिलने लगा है। इसलिए तो रूप गोस्वामी पाद जी क्या बोल रहे हैं भक्ति रसाम सिंधु में, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख से यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत। जब तक भुक्ति मुक्ति की इच्छा बनी रहेगी तब तक हमारे हृदय में जो शुद्ध भक्ति का जो आनंद होना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा हमें, तब तक नहीं मिलेगा, तब तक वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। और तब तक हम क्या करते रहेंगे, कंपेयर करते रहेंगे, इसके पास जो रखा है सामान, इसके पास जो रखा है, इसका पास जो टैलेंट है, इसके पास जो ये है योग्यता है, इसके पास जो सुविधा है वो और अच्छी है, मुझे भी मिल जाए तो मैं तब ठीक से भक्ति कर पाऊं, ये प्रॉब्लम है। तो इससे क्या है कि हम मार्ग को भटकाने के लिए माया जो है पूरा भरपूर प्रयास कर रही है कि हम कृष्ण भावना के पथ से हट जाए, दूर हो जाए, पूरा प्रयास कर रही है। सावधान होना चाहिए हमें, आज के डेट पे यश मिलना जो है बहुत मुश्किल नहीं, अगर आप यश की इच्छा है तो यश प्राप्त करने के लिए बहुत सरल साधन है आज के। सोशल मीडिया में चाहिए प्रमोशन, जो प्रमोशन की कई कंपनी है आपको इतना प्रमोट कर देंगे कि आपका मीडिया में बहुत नाम होगा। थोड़ा टैलेंट होना चाहिए बोलने का, बस बोलने की थोड़ी कला होनी चाहिए, थोड़ा नॉलेज हो सोसाइटी में क्या चल रहा है, बस शुरू हो जाइए, आप देखिए लाखों करोड़ों व्यूअर्स आपके होंगे। ऐसे ऐसे लोग भी फेमस हो गए हैं जिनका सब्सटेंस कुछ है ही नहीं, बिल्कुल बंडल है, तो जिसके भाग्य में लिखा है यशस्वी होना, तो वैसे ही यशस्वी हो जाता है, वैसे ही नाम हो जाता है उसका। तो इसलिए सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, हमारा मन जो है हमारे भजन में लगना चाहिए, यानी कि तभी तो रूप को नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, गुरु मुखा पद्मा वाकिया चित्ते ते कोरिया किया आरोना कोरिए मने आशा। गुरु को खुश करना है, गुरु हमारे भी और होने चाहिए, जैसे कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या कहते थे, ऐसी सेवा करो कृष्ण की कि कृष्ण आपको देखना चाहे या गुरु आपको देखना चाहे, गुरु आपसे मिलना चाहे, गुरु आपसे बार बार मिलना चाहे, गुरु आपसे मिलना चाहे, गुरु आपका दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के प्रसंग में देखते हैं, वहां पे लक्ष्मीदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, ध्रुव महाराज की तपस्या को देखकर वैकुंठ छोड़कर भगवान श्री नारायण मधुवन में आए ध्रुव महाराज का दर्शन करने के लिए। सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे लिखा, ध्रुव महाराज का दर्शन करने के लिए नारायण आए वैकुंठ छोड़कर। ध्रुव महाराज को किसी सोशल मीडिया में जाना नहीं पड़ा और पूरे ब्रह्मांड में सबसे यशस्वी व्यक्ति बन गए ध्रुव महाराज। कैसे, एक जगह पर भजन करके, एक जगह पर भजन करके। इसलिए श्रीपाद अंगरपुर से जवाब में कहा कि प्रभु जी आप कभी आइए दिल्ली, आकर भी मंदिर में कीर्तन करिए। प्रभु जी ने कहा कि प्रचार जिसलिए कर रहे हो, सबको वृंदावन लेके जाना चाहते हो ना, मैं तो पहले से ही वृंदावन में हूं, तुम आओ वृंदावन, मैं क्यों आऊं दिल्ली। उन्होंने ऐसा बोला, इसलिए आज भी हम देखते हैं कि श्रीपाद इंद्र प्रभु जो वृंदावन में रहकर केवल कीर्तन करते थे, आज उनका कीर्तन तो है पूरी दुनिया में सुना जा रहा है और कितने सारे लोग उनकी नकल कर रहे हैं। आप समझ रहे बात को, तो क्या है, का मतलब ये है कि सेवा के द्वारा हमें गुरु को, भगवान को प्रसन्न करना है, वैष्णवों को प्रसन्न करना है, और ऐसे में किसी सुविधा की आवश्यकता है तो उसका भी उपयोग किया जाए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ये हमारा एजेंडा होना चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक जीवन में सफल होंगे, नहीं तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? इन्होंने प्रश्न पूछा कि अगर हम एकावल भजन करेंगे तो भजनानंदी बन जाए, भजनानंदी तो नहीं बन जाए, हमने भजनानंदी बनने के तो नहीं कहा, लेकिन प्रभुपाद जी गुरु महाराज ने क्या बोला, गोष्ठी आनंदी इस भजनानंदी हुज प्रीचिंग। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने क्या बोला, गोष्ठी आनंदी इस भजनानंदी हुज प्रीचिंग, यानी गोष्ठी आनंदी भी भजनानंदी होता है, क्योंकि बिना भजन के प्रचार नहीं कर सकते आप। अरे अंदर ये खोखला हुआ आपका, पूरा आपका अंदर खोखलापन है तो क्या प्रचार करेंगे आप, लाए आगे फूक मार के उड़ा देंगे, गुब्बारे की तरह उड़ने का कोई फायदा नहीं, उसका गैस लिमिटेड होता है। तो इसलिए क्या है कि सस्टेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है सेवा के साथ साथ, इसलिए साधना की आवश्यकता है, श्रवण की आवश्यकता है, ग्रंथों के अध्ययन की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है, आत्मान्वेषण की आवश्यकता है, सेल्फ असेसमेंट की आवश्यकता है, इसलिए एकांत में कई बार जाना चाहिए। इसलिए ठाकुर भक्ति उन्होंने कहा है एकादशी के दिन क्या करो, सेल्फ असेसमेंट करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, क्योंकि पिछले 15 दिन में या 14 दिन में क्या हुआ था हमारे साथ, क्या हमने किया, कितना श्रवण कीर्तन किया, किसी तरह से सेवा हमने की, कितने लोगों को दुखी किया, कितने लोगों को सुखी किया, इस सब का असेसमेंट करो बैठ के 15 दिन में एक बार कम से कम। इसको कहते हैं भजन। भजन का मतलब यहां पर यह है कि इंट्रोस्पेक्शन करना, ये बहुत जरूरी है। और बताइए,
हरे कृष्णा प्रभु जी, हम कई बार देखते हैं कि जैसे कोई इवेंट रिकॉर्ड हो रहे होते हैं मंदिर में, या कोई भक्त जो है वो लेक्चर भी दे रहा होता है, या कुछ और भी हो रहा होता है, तो उसके पीछे जो उद्देश्य कई बार ये भी होता है कि ये अब रिकॉर्ड जो है इंटरनेट पे जाएगा, इससे मंदिर का जो है वो प्रचार होगा, या फिर जो भाव होता है वो भगवान का प्रचार होता है, बट कहीं ना कहीं माइंड में होता है कि ये सोशल मीडिया में जाना है अभी, और हमारे यहाँ पे भी ग्रुप वाणी ग्रुप बना हुआ है, तो इसीलिए बना हुआ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट के थ्रू भी प्रचार कर सकें। तो ये भी माइक्रो लेवल पे जो है भक्ति में बाधक है या नहीं, ये बाधक नहीं है क्योंकि हम ये भगवान के प्रचार के लिए करना चाहते हैं।
वो तो हमने बताया ना भी, अगर कृष्ण की सेवा के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए, देखिए कोई भी सेवा के पीछे इंटेंट देखा जाता है, और भाव अनुकूल है तो सबको ठीक है, भाव प्रतिकूल है तो बिल्कुल ठीक नहीं। सिंपल सी बात, भाव अगर देखा जाता है अनुकूल होना चाहिए, इंटेंट अगर फेवरेबल है कि राधे राधिका रमण की प्रसन्नता के लिए, ताकि मंदिर के बारे में लोग अधिक से अधिक जाने, कृष्ण भावना भावित हो, तो तब तो ठीक है। और बताइए, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।